मक्की सूरतों की तरह ये सूरत भी बड़ी सॉफ्ट सूरत है। टोटल 109 आयतें हैं जो हम पूरी की पूरी इस बारे में पढ़ेंगे, और एंड पे सूरत हूद की भी चंद आयतें हैं। मदनी सूरतों के बाद मक्की सूरत ऐसी लगती है जैसे स्वीडिश खाना खाने के बाद कावा, पान, चालिया, गोटा, हाँ, यानी डाइजेस्टिव है। और ये वाकई आपको अल्लाह तआला का कुर्ब देती हैं। सूरतें बहुत सिंपल सी हैं, बस आप इसके मफहूम समझते जाएं तो ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा दिल को इसमें डालना पड़ता है। मसलन आप देखेंगे कि पहली चार आयतें 1 से 4 टॉपिक है, ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। क्या लोगों को ये बात अजीब लगी कि हमने वही की उनकी तरफ एक शख्स पे इस बात की कि तुम डराओ लोगों को और खुशखबरी दो ईमान वालों को, और साथ ही ये कह दो क्या कि अन्नलहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के कदम सिद्क़ है। यहाँ कदम सिद्क़िन क्या है? सच्चाई का कदम, हर वो कदम जो हक के रास्ते में उठे, इल्म लेने से लेकर इल्म देने और अमल करने और इंसानों की खिदमत का, और बिल आखिर ये जन्नत की तरफ जाते हुए सबीलुल जन्ना की तरफ बढ़ते हुए कदम होंगे। अल्लाह ताला ने आपको मुझे इसमें खुशखबरी दे दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जन्नत मिले तो फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सच लाना पड़ेगा, मकसद को लाना पड़ेगा। जबकि कुफार तो ऐसी चीज़ों को जादू ही कहते हैं। फिर आगे कुछ कुदरते कायनात की बातें जिसमें अल्लाह ताला कायनात का जो निज़ाम चला रहे हैं उसका तذकरा करने के बाद एंड पे फिर दोबारा क्या कर दिया कि लियज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त। अल्लाह का प्लान क्या है? ईमान ला के अमल साले करने वालों को जजा दे, और इसके बरक्स जिन्होंने इनकार किया उनको सजा दे। आपके मेरे लिए इसमें अमल की बात क्या है? अपनी ज़िंदगी को सच के लिए वक्फ कर दें। फिर उसके बाद आयत नंबर 5 से 6 में अल्लाह ताला की वाज़े निशानियाँ क्या पैगाम दे रही हैं। हुवल्लज़ी जअला शम्स ज़िया वल क़मर नूरा, आप देखिए इसमें सूरज की रोशनी और चाँद के नूर की बात है, और फिर उनकी मंजिलों की बात है, यानी एक छोटा सा हिलाल कमर से बदर, बदर से फिर कमर, और फिर हिलाल कैसे बन रहा है? कभी तुमने सोचा कि ये कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? बस इस पे गौर करते जाओ तो तुम्हें रब का कुर्ब मिलेगा। लिखिए कुरान अल्लाह का कलाम और कायनात अल्लाह का फ़ेल है, और अल्लाह के कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं। जितना कुर्ब आपको कुरान पढ़कर अल्लाह का मिल सकता है उतना कायनात में घूमते फिरते चलते फिरते गौर व फिक्र से भी आपको मिल सकता है। फिर आयत 7 से 10 में बुरे और भले लोगों का अंजाम है। इन्नल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उम्मीद ही नहीं रखते हमसे मुलाकात की, क्योंकि वो दुनिया की ज़िंदगी में खुश हो गए और इत्मीनान पकड़ लिया इसका। ऐसे लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना आग है इस काम की वजह से जो वो करते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किए, यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम, इसको हाईलाइट कीजिए, राह दिखाएगा उनको उनका रब उनके ईमान के बदले में। ईमान एक टॉर्च है, किसी का छोटा किसी का बड़ा एक बल्ब है। किसी के पास 60 वॉट है तो किसी के पास 100 है तो किसी के पास 1000 वॉट का बल्ब है। जितना ईमान उतनी क्लैरिटी, उतना अमल करने की सहूलत, और बिल आखिर ये ईमान इनको जन्नत में ले जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और हमेशा की नेमतें। जन्नती जन्नत में जाकर क्या कहेंगे? दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह तू, और उनका आपस में तहिया क्या होगा? सलामुन, एक दूसरे को जन्नती मिलकर हाय बाय शाय नहीं करेंगे, सलाम करेंगे। वाखिरु दावाहुम अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब वक्ते मुलाकात ख़त्म होगा, जब एक दूसरे से बिछड़ने लगेंगे तो अल्लाह की तारीफ़ें करेंगे। आप देखिए आपको फिर एक बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिल गया। पूरे कुरान में 4 जगह आपको ये फ्रेज मिलेगी। पता क्या चला इससे कि दुनिया ही के तलबगार ना बन जाओ। आप देखिए जो दुनिया के ऐशो आराम में मगन हो जाता है, निशानियाँ देख कर भी मार्फत नहीं पाता, आखरत की जवाबदही से गाफिल है, ऐसे ही लोगों का ठिकाना जहन्नुम है जो उन्होंने अपने अमाल की वजह से हासिल किया। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं फरमाता। एक रिवायत है मुस्नद अहमद में 10071 नंबर है, अबू मूसा अलअशरी रावी हैं। आपने फरमाया कि जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की इसकी आखरत को नुकसान पहुंचा, और जिसने अपनी आखरत को पसंद किया इसकी दुनिया को नुकसान पहुंचा। बस तुम बाकी रहने वाली चीज़ को फना होने वाली चीज़ पर तरजीह दो। मुराद यह है कि अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया हासिल की, इससे मुराद हलाल वाला मामला नहीं है, यानी जो सिर्फ दुनिया दुनिया में रहा। मिसाल एक कारोबार कर रहा है तो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो दुनिया तो बन रही है लेकिन आखिरत तो बिगड़ रही है। एक शख्स है वो हर वक्त अपने ही दुनिया के कामों में उलझा हुआ है, उसको अल्लाह के दीन का कोई गम नहीं, तो इससे नुकसान क्या होगा कि जब वो ख़त्म होगा तो दुनिया भी ख़त्म, माल विरसा बन जाएगा, जिस्म जसद बन जाएगा और इंसान जो है वो एक मैयत बन जाएगा। हम में से कोई चाहता है कि हम ऐसे रहें? नहीं। बाकी रहने वाली को फना रहने होने वाली पे बाकी तरजीह देना है। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 11 और 13 में कुछ बशरी कमज़ोरियाँ हैं। चूँकि अल्लाह ने हमें बनाया है, उसको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासी, इस पूरे टुकड़े में इंसान की तीन कमज़ोरियों का तذकरा है। 3 वीक पॉइंट्स ऑफ अ ह्यूमन। या नंबर एक, इंसान खैर को हासिल करने के लिए बड़ा जल्दबाज है, हेस्टीनेस, जल्दी। और इसका तरीका आप देखा करें शादियों में जब खाना खुलता है, इससे आगे बड़ी चीज़ों को तब खुद दे कैसे लगता है ये पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा खाना मिल रहा है। या अगर आपको एयरपोर्ट पे कहीं पता चले कि चलिए जी जहाज़ में दाखिल हो जाए, फिर ऐसे लगता है कि बस मैं चली जाऊँ सबसे पहले, और जो लाइनें टूटती हैं तो इंसान चाहता है कि उसको जल्दी जल्दी सब मिले। दूसरी इंसान की कमज़ोरी क्या है कि तकलीफ़ पे गिड़गड़ा कर रहम मांगता है, और जब दूर हो जाती है तो गाफिल हो जाता है। बच्चे को भी देखा करें कि जब तकलीफ़ होती है तो कैसे मामा मामा, और जब सही होता है तो माँ पुकारती और आता भी नहीं। तीसरी चीज़, एक दफ़ा किसी हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दें फिर नहीं मानता, क्योंकि ईगो, अना, इगोइस्टिक होना। अल्लाह आपको मुझे इन सारी कमज़ोरियों से पाक करे। आगे आयत 14 से 17 में कुरान का तذकरा है, और यहाँ एक नुक्ता लिखना चाहें तो लिख ले, सूरत यूनुस का मेन थीम ही कुरान है। तो कुरान हर दौर के तकाजे पूरे करता है। अल्लाह ने हमें इसमें बता दिया, सुम्मा जालनाकुम खलाइफा फिल अर्दि मिन बादिहिम, उनके बाद हमने तुम्हें इस ज़मीन का खलीफा बना दिया, ली नंजुर कैफ तअमलून, ये बड़ा अहम नुक्ता है, ताकि हम देखें कि तुम करते क्या हो। यानी हर इकतदार और हर नेमत एक इम्तिहान है, और जब अल्लाह किसी बंदे को कोई नेमत दे तो उसको उसको पूरा करना है। इसमें अगर आयत 15 का आखिरी जुमला नोट कर लें तो बहुत ही काम की बात है इसमें, और वो क्या कि इन्नी अखाफ इन सही तो रब्बी अजाब यौम नज़ीम। जब कभी कोई आपको ज़बरदस्ती या मोहब्बत में किसी गुनाह पे माइल करे तो ये जुमला बोलिए, मुझे डर लगता है अपने रब की नाफरमानी करते हुए उस बड़े दिन से जिसमें अजाब होगा। बस फिर आपको इंशाल्लाह कोई माइल नहीं कर सकेगा गलत काम पे। फिर आयत 18 से 20 में, इस्लाम दलील का दीन है, यानी दीन दलील के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें मक्का वालों के खुद साख्ता नज़रियात के खिलाफ दलाइल दिए गए कि ये बताओ कि तुम जिनको पूछते हो क्या नफ़ा नुकसान देते हैं, माल या दुर्रुहूँ वला यनफाऊँ, फिर ये जो तुम कहते हो हाउलाई शिफाऊ ना, ये कल हमारे सिफारशी होंगे अल्लाह के नज़दीक, कुल अतुनबियून अल्लाह बिमा ला यालमु फिस समावाती वला फिल अर्द, तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो जो आसमानों ज़मीन में है ही नहीं, यानी बेतुकी बातें करते हो। आज भी शिर्क की बहुत बड़ी वजह सिर्फ गैस वर्क है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या बता दिया कि अगर कोई दलील है तो दिखा दो, और दलील नहीं है तो फिर अल्लाह की बात को मान लो। फिर आयत 21 से 23 में इंसान की एहसान फरामोशी का तस्कर है। वइज़ा ज़क़्ना अन्नास रहमतम मिन बादी दर्रो, जब हम उनको रहमत चखा देते हैं ज़रर के बाद जो उसको लगी थी, तो वो हमारी आयतों में मकर करने लगता है। वही बात जो पीछे भी गुजर गई कि इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो बड़ी भीगी बिल्ली बन के बड़ा आजीज सा बन जाता है, और ज़रा हालात बदलते हैं तो आंखें दिखाने लगता है। आज खुशियों में हमारा क्या रवैया है हम खुद देख सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही हालात मक्का वालों के भी थे, आज हमारे भी हैं। जब मुश्किलों में फंसते तो कहते अल्लाह को पुकारो, जब आम हालात खुशी के होते तो कहते अपने बुतों को खुश करो। और इसमें इकरमा का एक वाक़या भी है जो उनके कबूल इस्लाम का ज़रिया बना, समंदरों में जाकर अल्लाह को पुकारते थे, कहते थे यहाँ तुम्हारे खुशकी वाले बुत नहीं आते, तो अच्छा वो यहाँ नहीं आते वो वहाँ भी नहीं काम करेंगे, और जो यहाँ मदद कर सकता है वो वहाँ भी करेगा। तो यहाँ अल्लाह ने ये बात करके जो एक बड़ा कीमती जुमला है इस हिस्से का, वो नोट कीजिए, बिल्कुल आयत 23 का एक जुमला, या अय्युहन्नास इन्नमा बख्शुकुम अला अन्फुसिकुम, तुम्हारी बगावत तुम्हारे अपने ही खिलाफ पड़ेगी, सरकशी, ट्रांसग्रेशन, तुग़यानी, तुम्हें नुकसान होगा। अदब देखिए कि बाज़ दफ़ा खुशियों और नेमतों के मिलने के मौके पे हमारा रवैया कुछ ऐसे ही हो जाता है। क्या हम शादियों पे आज बागी नहीं हो जाते, सरकश नहीं हो जाते, हर हद को क्रॉस नहीं कर रहे होते? पर बाज़ दफ़ा तो ज़ुबाने हाल से हम कह रहे होते हैं कि हम खुशी के मौके पे अल्लाह को नहीं नाराज़ करेंगे, तो और कब करेंगे? ये तो मेरा पहला बेटा है, इसकी खुशी पे ना अल्लाह को नाराज़ करूं, और ये तो मेरा इकलौता बेटा है, और ये तो मेरी घर की ये है तो वो है, तो अपना जायज़ा लिया करें हम सब। जब हमारे घर में कोई खुशी आती है उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? और अगली आयतें, बहुत ही प्यारा टॉपिक है इसका, आयत 24, जिंदगी एक ढलता साया। इस पे आज से कोई 20 साल पहले एक लेक्चर दिया था दावा सीडी में, बहुत लोगों के दिलों को खोल दिया था उसने, और वो क्या था कि जिंदगी एक ढलता साया, लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो, हम सब की कहानी है। आपका मेरा लाइफ स्पैन किस तरह घूम रहा है, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, दुनिया की मिसाल क्या है? अल्लाह ने यहाँ दुनिया की ज़िंदगी को एक खेती से मिसाल दी है। आप देखिए कि आसमान के पानी से ज़मीन पर खेती उगती है, इंसान की भी पैदाइश पानी से शुरू होती है, फिर इंसान बड़ा होने लगता है, फिर खेती अपने जोबन पे पहुँचती है, इंसान का बच्चा भी जवान होता है, खूबसूरती जवानी, और उसके बाद अल्लाह की आफत खेती पे अचानक आती है, उसको उजाड़ देती है, और इंसान की तरह इंसान की भी मौत का वक्त आता है, कभी तो जवानी में फसल काट ली जाती है। तो आप और मैं अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ताला आपको मुझे जन्नत की तरफ बुलाता है आयत 25-26 में, वल्लाहु यदु इला दारिस्सलाम। यहाँ नोट कीजिएगा, जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम, इला की वजह से दार के लफ्ज़ के अंदर रा पे ज़ेर है, असल लफ्ज़ क्या है, दारुस्सलाम, सलामती वाला घर। आज दुनिया में झगड़े, लड़ाइयाँ, नफसा नफसी, खींचा तानी, इवन घरों के अंदर माहौल ख़राब होता है, तो इंशाल्लाह सलामती का घर वो जहाँ अल्लाह हमें ले जाए। और अल्लाह से जब हम रोज़ सिराते मुस्तकीम की दुआ करते हैं, अल्लाह कहते हैं वयाहदी में यशा, हम जिसको चाहते हैं उसको सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन्होंने अच्छे काम किए उनको हुस्ना है, यहाँ हुस्ना से मेरा जन्नत, बस ज़्यादा क्या है? सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि ये ज़्यादा क्या है, तो फरमाया दीदारे इलाही, यानी नेकियों के बदले में तो कोई जन्नत दे देगा अल्लाह अपनी रज़ा से, लेकिन ज़्यादा क्या है, बोनस, एक्स्ट्रा। किसी का कोई अमल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला उसको अपना दीदार कराए। अल्लाह आपको मुझे अपना दीदार कराए, और नहीं छाएगी उनके चेहरों पे स्याही और ज़िल्लत, और यही लोग जन्नती हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्या पता चला, जैसा अमल वैसा बदला, आयत 27 से 30 में यही मफहूम है, वल्लज़ीन कसबू सय्यिआति जज़ाउ सय्यिआति बिमिस्लिहा, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम किए तो बुरी जजा है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को ना माना अल्लाह कल वहाँ उनको जहन्नुम में डाल देगा, और जिन्होंने दुनिया में शिर्क किए थे वहाँ उनके दरमियान फ़ज़य्यलना बैनहुम, उनके दरमियान जुदाइयाँ डाल दी जाएंगी। और साथ ही फिर अल्लाह ताला ने वापसी का तذکرہ कर दिया, वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, वो पलटा दिए जाएंगे अपने हकीकी मौला की तरफ, सब खो जाएगा जो झूठ बांधा हुआ था, यानी वहाँ कोई काम नहीं आएगा। आगे आयत 31 से 36 में, हिदायत चाहने वालों को मिलती है। हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें मिली, रिस्क आसमानों से मिला, फिर समा और बसर, सुनना देखना कानों की बातें, ये अल्लाह कहते हैं इन सब को इस्तेमाल करो हिदायत के रिसेप्टर्स के तौर पे, और इससे हिदायत लोगे, मांगोगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। इसमें बड़े प्यार से अगर आप देख रहे हैं आयत 35 में, तकरार है लफ्ज़ हिदायत की, और आपकी मेरी ज़िंदगी का तो खुलासा क्या है, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। फिर आयत नंबर 37 से 41 में, दस्तूर इलाही, अल्लाह की एक सुन्नत नोट कर लीजिए, और वो क्या है कि तलब वालों को अल्लाह दीन दे देते हैं, तलब वालों को दुनिया दे देते हैं, नेकी तलब करेंगे नेकी मिल जाएगी, बदी तलब करेंगे बदी मिल जाएगी। मक्का वालों ने कुरान पे जो इल्ज़ाम डाले, इतराज़ात किए, उनका तذکرہ है, और आप देख रहे हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने वमा कान हाजल कुरान, ये कुरान ऐसा नहीं है कि इसको झूठ बांध दिया जाए अल्लाह के सिवा, ये तो सच्चा साबित करता है अपने से पहली किताबों को, और तफसील है किताब की जिसमें कोई शक नहीं, और रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तो आपके मेरे हाथों में इस वक्त कुरान है, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और भी तो हो सकता था। फिर उसके बाद 42 से 44 में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर अमल ना करना, इसकी सज़ा बयान कर दी गई, और वो क्या है कि अल्लाह ताला फिर तौफीक छीन लेता है। जानवरों के दर्जे पे आ जाता है, बंदा बात सुन रहा है लेकिन मान नहीं रहा, तो अल्लाह नबी से कहते कि आप इन पे मेहनत ना करें, ये कोई नहीं सुनते। आफानता तो उसमें सुम्मा वलऊ कानुला याकिलून, यानी आप देखिए बहरे के सामने सारा दिन बैठकर आप बोलते रहें क्या फ़ायदा, अंधे को सारा दिन रास्ता दिखाते रहें क्या फ़ायदा। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं और सुन सुन के सुन हो जाते हैं। फिर आगे क़यामत का बयान है आयत 45 में कि जिस दिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा क्या फील होगा, का लम यलबस इल्ला सात मिन नहार, हम तो बस एक घड़ी भर दुनिया में रहे और एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। आपकी मेरी ये दुनिया की ज़िंदगी वहाँ एक लम्हे की भी नहीं लगेगी, तो अक्लमंद कौन है इस चंद लम्हों की ज़िंदगी के बदले आखिरत को बर्बाद ना करे। फिर आगे आयत 46 से 53 में हक कामयाब और बातिल नाकाम होता है। आज अगर इसका आपको मुझे यकीन आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ बदल जाएंगे। और इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को बता दिया कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, इस्लाम की फतूहात और कामयाबियाँ कुछ आपके सहाबा के दौर में हुआ होंगी, लेकिन आप अपने आप को अल्लाह के जिस रास्ते में लगा चुके हैं उस पर लगाए रखिए, हक एक दिन गालिब आएगा और बातिल दब जाएगा। फिर आयत 54 से 56 में दुनियादारों की हसरत और बेबसी का तذکرہ है। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत, अब देखिए इस हसरत को महसूस कीजिएगा, सारी ज़िंदगी दुनिया में दुनिया 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 कमाई, क़यामत के दिन क्या कहेंगे कि ये सब कुछ लेकर फ़दिये में कबूल करके हमें जहन्नुम से बचा लिया जाए, लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। असल तो इस दुनिया में अपना आप देना था, बाद में क्या फ़ायदा। रिजल्ट वाले दिन एक तालिब इल्म कहे अब मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, वो कहेंगे अब क्या फ़ायदा, अब तो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। और आगे 57 58, कुरान मेरे दिल की बहार, ये मौजू इसलिए भी इधर रखा गया कि इसी टॉपिक से आपको एक लेक्चर मिलेगा। अगर आप नूरुल कुरान ऐप खोल लीजिए तो कुरान की कैटेगरी में आपको एक कोर्स मिलेगा कुरान की किरणें, उसका डे 1 का लेक्चर है। किसी नए बंदे को भी जिसका दिल नहीं खुल रहा ना, ये लेक्चर सुनवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल के ताले खुलते हैं इस लेक्चर में। क्या पता चलता है इस आयत की रोशनी में कि मोमिनों के लिए कुरान हिदायत भी है और रहमत भी है, और दिलों का इलाज करना है। किस चीज़ की बीमारी है दिल में? आप देखिए दिलों में घुटन होती है, तंगी होती है, वसवसे आते हैं, फिर बुरे ख्याल आते हैं, फिर इसी तरह फासिद इरादे हैं, गलत चीज़ें बंदा सोचता है, बुरी बुरी बातें सोच रहा होता है। कुरान इन सब चीज़ों का इलाज है। अगर आप में से इस किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कुरान के करीब आ जाए, हत्ता कि आपको तक कि जादू, इससे बड़ी बीमारी किसी को क्या होगी। तो किसी पर भी जादू का अगर शक और शुभ भी आपको है ना, तो कुरान को पढ़िए, अल्लाह कुरान को आपके दिल की बहार बनाएगा। फिर आगे आयत 59 60 में हर चीज़ हलाल है, यानी असलुल अशियाई इबाहतुन, हर चीज़ अपनी असल के साथ हलाल है, हाँ मगर जिसे शरीयत हराम करे, यानी हमारा दीन हराम हराम नहीं कहता, हलाल हलाल कहता है, इल्ला ये कि वही चार चीज़ें जिसका तذکرہ हमने पीछे कई बार पढ़ लिया। तो हर वक्त हलाल और हराम के फतवे नहीं देने चाहिए। फिर आयत नंबर 61 तिलावते कुरान से मुतल्लिक है, अल्लाह ताला का महबूब अमल है। जब बंदा कुरान को अच्छी आवाज़ से पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसको एंजॉय करता है, और ख़ास तौर पे जब पढ़ने वाला अल्लाह का नबी हो। फिर उसके बाद आयत 62 5 से 5 में वलीउल्लाह कौन है। आज हमारे यहाँ लफ्ज़ औलिया कराम भी एक बड़ा मुतनाज़े फ़ी मसला बन गया, तो अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आप कैसे वलीउल्लाह का इनकार कर सकते हैं, आप कैसे औलिया कराम का इनकार कर सकते हैं, जबकि कुरान उनकी खूबियां दिखा रहा है। कौन होते हैं औलिया कराम, ज़रा सा कुरान से ही पूछते हैं। औलिया अल्लाह वो हैं जिनके दिल नूरे ईमान से मुनव्वर होते हैं, और जो अपने अमाल अल्लाह की इताअत वाले करते हैं, यानी उनके अमाल अल्लाह ताला की इताअत से मुजयन होते हैं। ना इन्हें माजी के हादसात और वाक़यात का अफसोस होता है, और ना मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान होते हैं। अपने दिलों को चेक करें। और अल्लज़ीना कानू यत्तकून, अल्लाह हमें भी तकवा इख्तियार करने वाला बना दे, और अल्लाह हमें अपनी विलायत नसीब फरमा दे। फिर आयत 66 से 70 में शिर्क की बुनियाद यकीन नहीं गुमान है, यानी गेस वर्क है। एक स्टूडेंट किताब नहीं खोलता लेकिन गेस करता है ये पेपर आ जाएगा, वो ये सवाल आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो उसके फेल होने में कोई शक नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसका टॉपिक लिख लें, शिर्क की कोई बुनियाद नहीं है दुनिया में, शिर्क बेबुनियाद चीज़ है और तौहीद ही के ऊपर ये कायनात खड़ी है।